उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर वो रोतर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की एक सुरमई और मनमोहक यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर डायरी वो सफर है जहां पर हम पूर्वोत्तर राज्यों की सैर करते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति और परंपरा से रूबरू होते हैं और क्या कुछ इन राज्यों में चल रहा है इन गतिविधियों से भी हम आपको परिचित करवाते हैं। तो हर रविवार शाम 5:30 से 6 बजे तक इस आधे घंटे हम आपके लिए ये पूर्वोत्तर राज्यों का लेखा जोखा और पूर्वोत्तर राज्यों की ये डायरी लेकर आते हैं। आज फिर आपके साथ मैं हूँ कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, हाल ही में दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार से देश के विभिन्न शहरों को सम्मानित किया गया। ये शहर देश भर में स्वच्छता के विभिन्न मानकों के आधार पर शहरों को दिए जाते हैं और इसी कड़ी में मिजोरम का एक छोटा सा शहर लुंगलेई शहर भी शामिल था। लुंगलेई शहर को लगातार विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है और मिजोरम की एक परंपरा भी है कि यहाँ स्वच्छता को संस्कृति में बहुत महत्व दिया जाता है और इसी तरह से लुंगलेई शहर भी लगातार स्वच्छता के मानकों में खुद को सिद्ध करता रहा है। इस बार लुंगलेई शहर को स्वच्छता की जिस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है वो है प्रॉमिसिंग शहर ऑफ स्वच्छता इन मिजोरम। तो आइए अपने संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में हम जानते हैं कि किस तरह से मिजोरम का ये छोटा सा शहर स्वच्छता का एक उदाहरण बन गया है।
घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े।
गांव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करें।
मिजोरम के लिए स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि समाज की संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा रही है। वर्षों पहले से ही मिजो समुदाय में साफ सफाई को लेकर विशेष चेतना रही है। पुराने समय में मिजो युवा हर सप्ताह और हर महीने सामूहिक रूप से अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते थे। इस परंपरा को हनात लांगपुई कहा जाता था। ये एक सामूहिक श्रम और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक था। आज भी वही परंपरा जीवित है। राज्य सरकार के सहयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से मिजोरम में स्वच्छता अभियानों ने एक नई दिशा पकड़ ली है। इस कड़ी में मिजोरम का लुंगलेई शहर जो राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में चमक उठा है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लुंगलेई को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ मिजोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समारोह केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पुरस्कार को मिजोरम के नगरीय विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री के सापडांगा ने प्राप्त किया। उनके साथ लुंगलेई नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लाल रिनाउमा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लुंगलेई नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लाल रिनाउमा ने कहा कि ये सम्मान परिषद और राज्य की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे YMA, MHIP, MZP और अन्य संगठनों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार लोगों की सामूहिक भावना और स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।
We are truly grateful that Lunglei has been recognized as the promising Swachh Shahar of Mizoram in the Swachh Survekshan 2024-2025 Tandem Hua. This recognition is a moment of pride and unity for the people of Lunglei. We dedicate a photo of the Lunglei Municipal Council. We have come a long way and we also deeply thankful to the government of Mizoram for their constant support. From the very beginning, Lunglei has stood together in the journey towards cleanliness. Various NGOs, including YMA, MHCP and MOP, have played an important role in this achievement. Environmental NGOs like Clean Lunglei Society and Project Safe Lung have also made significant contributions. We will continue to put in our best efforts to make Lunglei the cleanest municipal in India.
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत दिया जाने वाला एक वार्षिक सम्मान है। इसका उद्देश्य देश भर के शहरों और कस्बों को स्वच्छता के विभिन्न मानकों पर परखना और बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से कई मानकों पर मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन की स्थिति, शौचालयों की सफाई, नागरिकों से मिली प्रतिक्रिया, नवाचार और सतत प्रयास। लुंगलेई ने 2016 में पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लिया था। तब से अब तक शहर को 6 अलग अलग पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें शामिल है वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ नवाचार और उत्तम कार्यप्रणाली पूर्वोत्तर क्षेत्र, वर्ष 2021 में नागरिक प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ शहर जनसंख्या 50,000 से 1,00,000 पूर्वोत्तर क्षेत्र, वर्ष 2022 और 2023 में स्वच्छ शहर जिसकी जनसंख्या 50,000 से 1,00,000 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, और वर्ष 2023 में मिजोरम राज्य में स्वच्छतम शहर जिसकी जनसंख्या 1,00,000 से कम। लुंगलेई जैसे छोटे शहर के लिए ये पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि जन भागीदारी, सामाजिक चेतना और सरकारी सहयोग से कोई भी शहर स्वच्छता में मिसाल बन सकता है। मिजोरम जैसे राज्य जहां सफाई जीवन का हिस्सा है, यहां के लिए ये उपलब्धि न केवल गर्व की बात है, बल्कि आने वाले समय में और बेहतर कार्यों के लिए एक प्रेरणा भी है। गिन गांगते की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े।
गांव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करें।
अब हम चलते हैं नागालैंड। नागालैंड यूनिवर्सिटी को 4 इंक्यूबेशन सेंटर में से एक के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार की एक पहल है जिसमें कि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है इंक्यूबेशन सेंटर्स के जरिए, और इसी तरह से नागालैंड यूनिवर्सिटी का चयन इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में होना ये एक बड़ी उपलब्धि है, और माना जा रहा है कि इससे नागालैंड में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। आइए हमारी संवाददाता असोनो से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
पहले बैच में नागालैंड विश्वविद्यालय का कोहिमा परिसर 44 लेबोरेटरियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिनमें अरुणाचल प्रदेश से 16, असम से 6, मणिपुर से 4 और शेष 18 नागालैंड से होंगे। इंक्यूबेटर्स के ऑनबोर्डिंग इसी महीने शुरू होंगे। पूरे क्षेत्र में इस पहल के तहत कुल 145 लेबोरेटरियों का चयन किया गया है, जिनमें से 50 शेयर प्रदर्शनकर्ताओं को 5,00,000 रुपए तक की स्टार्टअप सीड फंडिंग मिलेंगे। इस पहल के अंतर्गत गतिविधियों में उद्योग जगत के नेताओं और स्थापित उद्यमियों द्वारा मार्गदर्शन तथा कार्यशालाएं, बूट कैंप्स और हैकाथॉन जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए असोनो, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा।
श्रोताओं, हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष भी मेघालय की राजधानी शिलांग में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के एक समारोह का आयोजन किया गया था। हमारे संवाददाता नीरज झा ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं कि किस तरह से मेघालय में ये आयोजन किया गया।
आकाशवाणी शिलांग में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर भव्य आयोजन। महानिदेशक ने सार्वजनिक प्रसारण की 90 वर्षीय विरासत को बताया राष्ट्र की आवाज। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी शिलांग और उत्तर पूर्व सेवा आकाशवाणी ने संयुक्त रूप से शिलांग स्थित उसोसो थाम ऑडिटोरियम में एक भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी, गणमान्य अतिथि, उत्तर पूर्व के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आशीष भटनागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, और 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से आए श्रोता शामिल हुए। इस अवसर पर मेघालय राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BDR तिवारी ने कहा,
आकाशवाणी की जानी मानी आवाज, जानी पहचानी आवाज, हम सभी के जिंदगी में जो आकाशवाणी सुनते हुए, रेडियो सुनते हुए बड़े हुए हैं, वो इसके महत्व को बखूबी जानते हैं। AI के दौर में चीजें बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, फिर भी आवाज तो पहचान है।
अपने संबोधन में डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली रेडियो प्रसारण के साथ आरंभ हुई ये यात्रा अब अपने 90वें वर्ष की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा,
इट वॉज टूडे ऑन दिस डे 1927 दैट द रेडियो वेव स्टार्टेड ग्रोइंग इन इंडिया एंड आकाशवाणी हैज इवॉल्व्ड इनटू अ पावरफुल पब्लिक टूल द इंस्टीट्यूशन आकाशवाणी विच इज द वॉइस ऑफ द नेशन।
उन्होंने बताया कि कैसे आकाशवाणी डिजिटल परिवर्तन की दिशा में न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हाल ही में लॉन्च हुए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के माध्यम से युवाओं और तकनीकी प्रेमी श्रोताओं से जुड़ रहा है। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया और तेजी से बदलते न्यूज साइकिल के इस दौर में भी आकाशवाणी आज भी भरोसेमंद, संतुलित और जिम्मेदार राष्ट्रीय आवाज है।
फॉर द न्यू जनरेशन वी हैव इवॉल्व्ड, वी हैव टेकन सेवरल स्टेप्स टू ब्रिंग आकाशवाणी क्लोजर टू द यंगर जनरेशन एंड टू द न्यू जनरेशन द जेन ज़ी दैट इज कॉल्ड। इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड फ्लीटिंग हेडलाइंस टेक स्पेस। आकाशवाणी रिमेन्स अ बीकन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड कंपोजर।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा उत्तर पूर्व के 8 राज्यों से आए संगीत बैंड्स का रंगारंग संगीतमय कार्यक्रम। प्रस्तुतियों में शामिल थे जयंत जमातिया, त्रिपुरा आकाशवाणी अगरतला, लुंगलिंग ट्रायो मिजोरम आकाशवाणी आइजोल, जोयस अपार्टमेंट सिक्किम आकाशवाणी गैंगटॉक, रूपम एंड फ्रेंड्स असम आकाशवाणी गुवाहाटी, इनोसेंट आईज मणिपुर आकाशवाणी इम्फाल, AR फोक अरुणाचल प्रदेश आकाशवाणी ईटानगर, फिफ्थ नोट नागालैंड आकाशवाणी कोहिमा, समर सॉल्ट मेघालय आकाशवाणी शिलंग। इन बैंड्स ने क्षेत्र की सांगीतिक विविधता को प्रस्तुत किया और विविधता में एकता का संदेश रेखांकित किया। इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन भारती पर किया गया जिससे देशभर के दर्शकों ने इस सांस्कृतिक गौरव को अनुभव किया। कार्यक्रम का समापन करते हुए डॉक्टर गौड़ ने सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा,
मे द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी एंड आवर बिलव्ड लिसनर्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट कंटिन्यू टू ब्लॉसम एंड ब्लूम मेकिंग इट मोर फ्रूटफुल फॉर ऑल एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन।
ये आयोजन आकाशवाणी की परंपरा, नवाचार और क्षेत्रीय गौरव का एक समन्वित स्वरूप रहा, एक सच्ची श्रद्धांजलि राष्ट्र की आवाज को।
श्रोताओं, सिक्किम में इन दिनों पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, टाइम कैप्सूल का रेप्लिका, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं टाइम कैप्सूल की प्रतिकीर्ति, जो गंगटोक शहर के MG रोड पर है। और इस टाइम कैप्सूल की रेप्लिका और टाइम कैप्सूल के महत्व के बारे में और पर्यटकों के लिहाज से ये कितना अहम है, इसके बारे में हम विस्तार से अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से जानते हैं।
मानस, हमारे सुनने वालों को बताएं कि इस टाइम कैप्सूल के रेप्लिका का क्या इम्पोर्टेंस है पर्यटकों के लिहाज से।
मैं पहले यह बताना चाहूंगा कि पर्यटकों के हिसाब से एक बड़ी ही आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये टाइम कैप्सूल है क्या। हमको सबको याद है कि हाल ही में सिक्किम जो है अपना 50वां वर्षगांठ मना रहे हैं भारत से जोड़ने के लिए, और इसी कड़ी में ये टाइम कैप्सूल का एक जो प्रोसेस है उसको बनाया गया। ये यहाँ के जो सूचना एवं प्रसार विभाग है इनके द्वारा ये कदम लिया गया है कि टाइम कैप्सूल। ये टाइम कैप्सूल ऐसा है कि टाइम कैप्सूल में पूरे सिक्किम की इतिहास होगी, भूगोल होगी, खान पान, पहनावा और यहाँ के जितने कला संस्कृति है सबके बारे में यहाँ पे जानकारी ली गई है। और ये जो टाइम कैप्सूल है इसको खोला जाएगा आज से 50 साल बाद, यानी कि 2075 में। यानी जो नए पीढ़ी होंगे आने वाले लोग, वो लोग जान पाएंगे कि इस समय में या इससे आगे सिक्किम में क्या था, हालात कैसे थे, यहाँ के खान पान कैसे थे, वगैरह वगैरह। तो इसी कड़ी में ये टाइम कैप्सूल, ये नया अनोखा पहल है ये लिया गया है। और ये जो है इसका जो वजन है वो 32 किलोग्राम है और ये बड़ी साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, उसको कोई खराबी ना आए, मौसम का परिस्थिति है इसका जेल पाए और 50 साल तक ये ऐसे ही मजबूत रहे, तो ये बड़ी अनोखी पहल है। जी
बिल्कुल, आपने कहा ये अनोखी पहल है और 2075 में जब ये खोला जाएगा तो जो उस वक्त की पीढ़ी होगी या जो उस वक्त देखने वाले लोग होंगे उनको क्या देखने को मिलेगा इस टाइम कैप्सूल में, किन किन चीजों को संजोया गया है इस बारे में भी बताएं।
जी जी जी, देखिए इसमें लोग जान पाएंगे कि आज की तारीख में सिक्किम कैसा था, 15-20-25 साल पहले चले जाए उसमें सिक्किम कैसा था, पता नहीं 50 साल बाद AI के जरिए और क्या क्या हम लोग को जानने को मिलेगा। लेकिन आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि जो आज के लोग हैं उसके दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोग किसी के हैंड राइटिंग, उसके दादाजी के या परदादा के हैंड राइटिंग देख पाएंगे, उसके नाम पे कोई चिट्ठी छोड़ के गया हो तो एक कैसा फीलिंग्स होगा आने वाले एक या दो पीढ़ी के बाद लोगों को, इसके तस्वीर होंगे और यही सारी सब खूबियां होंगी कि ये लोग क्या खाते थे, कैसा पहनावा था, यहाँ की बोलचाल कैसे थे, कल्चर कैसे थे, लोगों में क्या फॉलो करते थे। तो एक कम्युनिटी के, एक समुदाय के, एक लोगों के जन्म से लेकर मरण तक सारे चीजें यहाँ जानने में हम लोग को मिलेंगे 50 साल बाद और यही है टाइम कैप्सूल।
माना उम्मीद है कि जो पर्यटक हैं वो इस टाइम कैप्सूल के रेप्लिका को देखने के लिए तो जरूर
बिल्कुल 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 जी। और इसी कड़ी में ये जो है, ये अभी जो आपने जिक्र किया, ये रेप्लिका जो है यहाँ MG मार्क है या ये पर्यटकों का आकर्षण का एक केंद्र है यहाँ पे है और जो मेन टाइम कैप्सूल है ये गैंगटोक के सेक्रेटेरिएट में रखा गया है और जो ये 50 साल बाद खोला जाएगा। जी कमल
जी धन्यवाद मानस।
दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और कला की एक रोचक यात्रा लाए हैं। ये रोचक यात्राओं की श्रृंखला में हमने पिछले कुछ दिनों बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की, आज बारी है पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की। पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। आप सभी ने मैरीकॉम का नाम तो सुना ही होगा और ऐसे तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों और तमाम खेलों में भारत के झंडे को लहराया है। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों से निकलने वाले खिलाड़ियों की यात्रा के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जो रग्बी जैसा होता है लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है। विशेषकर तेरशिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिश्मी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुट जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा है। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की मैरी कॉम की। उनका पूरा नाम मंगते चंगनेई जैंग मैरी कॉम है। वे मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले से आती हैं। उन्होंने 2002 में तुर्की के अंतालिया में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद वे 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में भी विश्व चैंपियन बनी। कुल मिलाकर उन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं सेखोम मीराबाई चानू की, जो मणिपुर के नोंगपोंग कांगचिंग गांव से हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का सिर ऊंचा किया। इससे पहले 2017 में उन्होंने अमेरिका के अनाहिम शहर में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के बर्मिंगहम राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने 201 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई को भी पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लवलीना बोरगोहेन असम के गोलाघाट जिले से आती है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और असम की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त किया। 2023 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और असम गौरव सम्मान से नवाजा गया। जेरेमी लाल रिनुंगा मिजोरम के आइजोल से हैं। 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक में उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर बने। 2022 के बर्मिंगहम राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में कुल 300 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। बिंध्या रानी देवी मणिपुर से ही आती हैं। उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। नयनमणि सैकिया असम के गोलाघाट से हैं और भारतीय लॉन बॉल्स टीम की सदस्य हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने लॉन बॉल्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दिम्पा देवी मणिपुर से हैं और उन्होंने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया। मणिपुर से ही बेमबेम देवी को भी भारतीय महिला फुटबॉल का अग्रणी चेहरा माना जाता है। वे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने तक भारत के लिए 85 से अधिक मैच खेल चुकी थी। थोइबा सिंह मणिपुर से आने वाले हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारत के लिए 1996 के अटलांटा ओलंपिक में खेले थे। सरिता देवी भी मणिपुर से हैं। उन्होंने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक और 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के या गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत है। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।